अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। षष्ठ प्रश्नात्मक इस प्रकरण में आचार्य पिपलाद जी ऋषि सुकेशा के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रथम कंडिका में इस प्रकरण के आचार्य पिपलाद जी के प्रति ऋषि सुकेशा ने प्रश्न किया, षोडश कल पुरुष विषयक। उस षोडश कल पुरुष को बताया कि शरीर के अंदर ही हृदय देश में अवस्थित है। वो हृदय में होने पर भी परिच्छिन्न नहीं है, वह पूर्ण है, पुरुष है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है। स्वतः जन्म मरणादि छह भाव विकारों से रहित है, निर्विकार है। जो पूर्ण तत्व है उसका स्वरूपतः जन्म नहीं होता, जन्म के बाद में जो वस्तु है करके प्रतीत होती है उसका वह हैपना भी यानी अस्तित्व भी एक विकार माना जाता है। पहले न होना बाद में होना ये विकार है। इस प्रकार का विकार पूर्ण वस्तु का नहीं है, पुरुष यानी आत्मा का अस्तित्व रूप विकार नहीं है। अस्तित्व आत्मा का स्वरूप है और वो नित्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता। यानी कि पहले नहीं था और प्रकट होने के बाद है करके प्रतीत हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए अस्तित्व रूप विकार से भी वह रहित है, निर्विकार है। और वृद्धि कहलाती है उपचय, उपचय का अर्थ होता है बढ़ना। तो जो सावयव वस्तु होगी उसके अवयवों का उपचय अभिवृद्धि, वह अवयवी की अभिवृद्धि कहलाएगी। आत्मा तो वस्तुतः निरवयव है, इसलिए उसकी वृद्धि भी नहीं होती है। तो तृतीय विकार माना जाता है वृद्धि रूप विकार। जायते अस्ति वर्धते, इसमें वर्धते शब्द से बताया गया, वह भी पूर्ण वस्तु का नहीं है। और चौथा विकार माना जाता है विपरिणमते। विपरिणाम का अर्थ होता है पूर्व अवस्था परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था ग्रहण। पूर्व अवस्था को छोड़ें और उत्तर अवस्था को धारण करें तो माना जाता है परिवर्तन हो गया, परिणाम हो गया। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन। तो जैसे शरीर शिशु अवस्था को छोड़ता है, पूर्व अवस्था को, और बाल्य अवस्था को धारण करता है। बाल्य अवस्था को छोड़ता है, युवा अवस्था को धारण करता है। तो पूर्व अवस्था परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था ग्रहण परिणाम कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। ऐसे आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, उसकी कोई अवस्था नहीं है कि वह पूर्व अवस्था छोड़े और उत्तर अवस्था को ग्रहण करे, ऐसा नहीं है। इसलिए परिणामात्मक विकार भी आत्मा का नहीं है। पंचम विकार माना जाता है अपक्षय को। अपक्षय कहते हैं घटने को, तो आत्मा घटता भी नहीं है, कम नहीं होता। जैसे शरीर एक निश्चित आयु तक अभिवृद्धि को प्राप्त होता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, अपक्षय शुरू हो जाता है। उसे बढ़ाने के लिए कुछ भी करो वो बढ़ता नहीं है, घटता रहता है वृद्धावस्था के बाद। वो अपक्षय नाम की पंचम विक्रिया मानी जाती है। और अंतिम विकार है विनश्यति, नाश। तो आत्मा घटती भी नहीं और नष्ट भी नहीं होती है, निर्विकार है, विकार से रहित है, इसलिए पूर्ण है। जो पूर्ण वस्तु होती है वह निर्विकार होती है, उसका जन्मादि विकार नहीं होता। इसलिए पुरुष का स्वतः न जन्म है न मृत्यु है। और जो पुरुष शब्दित आत्मा में जन्म मरण रूप संसार की प्रतीति हो रही है, उसका निमित्त है कलाएं। कला निमित्तक ही जन्म है, कला निमित्तक ही मृत्यु है। वे कलाएं हैं 16। ये जो स्वतः पूर्ण है उसमें अपूर्णता, स्वतः जो निर्विकार है उसमें जन्मादि विकारवत्ता की भ्रांति में निमित्त भूता, ये 16 कलाएं हैं। उन 16 कलाओं को प्रश्नोपनिषद के 6 प्रकरण के 4 कंडिका में बताया जा रहा है कि उस पूर्ण पुरुष ने पहले तो संकल्प किया, विचार किया कि मैं व्यापक होने के नाते कहीं से निकलना चाहूं तब भी निकल नहीं सकता। 8:30 बजे कुछ लोगों का यहां से निकलने का समय होता है, तो 8:30 बजे के बाद थोड़ा प्रवचन लंबा होना शुरू हो जाए तो 1-2 मिनट प्रतीक्षा करेंगे बाद में, तो फिर देखेंगे ये विषय पूरा होने वाला नहीं है तो निकल जाते हैं। कुछ लोगों का समय है 9:30 बजे तक, 9:35 9:40 तक प्रतीक्षा करते हैं, नहीं छूटता है स्वाध्याय तो निकल जाता है। कभी आकाश को भी चौपाटी घूमने का मन हो जाए, इस हॉल के अंदर के गणेश विसर्जन हो रहा हो और वहां की भीड़ देखने का मन करें इस हॉल से घिरे हुए आकाश को, तो जा सकता है क्या? इसलिए कि वो व्यापक है और निकल नहीं सकता। जो व्यापक होता है देश से अपरिच्छिन्न होता है, वो सर्वत्र होता है। इसलिए यहां से कुर्सियों को यहां रखी हुई मान लो इच्छा हुई तो वो भी निकल सकती है, मंच भी हट सकता है, माइक, जो परिचिन्न वस्तुएं हैं वो तो यहां से हट सकती है, लेकिन आकाश वो कहीं आ नहीं जा, उसका अभाव नहीं हो सकता, वो जा नहीं सकता, वो है। ऐसे आत्मा जो पूर्ण है पुरुष शब्दित, वह कहीं जा आ नहीं सकता, वो पहले से ही विद्यमान है। इसलिए उसने विचार किया कि ऐसा कौन होगा जिसके इस शरीर में रहने से माना जाएगा मैं हूं, इस शरीर से जिसके निकलने से माना जाएगा कि मैं निकल गया। तो विचार से उस परमेश्वर को प्रतीत हुआ कि मेरा प्रतिनिधि बनने की योग्यता प्राण रखता है, तो प्राण को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, अपने प्रतिनिधि के रूप में प्राण का सर्जन किया। इसलिए माना जाता है जब तक शरीर में प्राण है तब तक चेतन है, और जब प्राण निकल जाए तो माना जाता है चेतन निकल गया। यद्यपि चेतन यानी पुरुष आत्मा वह जा आ नहीं सकती, वो ही है, वो मृत शरीर में भी है, लेकिन लोक में व्यवहार होता है प्राण के निकल जाने के बाद इस शरीर में से चेतन निकल गया ऐसा, क्योंकि ईश्वर ने संकल्प पूर्वक प्राण को अपने प्रतिनिधि के रूप में, चेतन के प्रतिनिधि के रूप में बनाया है ना, ऐसा ही। और ईश्वर सखा है जीव का, जीव का सच्चा मित्र ईश्वर है, और वो चाहता है कि जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र को अपने से नीचे नहीं रखना चाहता, बराबर रखना चाहता है। जो निस्वार्थ मित्र होगा, भगवान कृष्ण निस्वार्थ मित्र है ना सुदामा के, इसलिए सुदामा के कहे बिना भी, सुदामा के तो मन में था थोड़ा सा कुछ आजीविका, जो उनके परिवार के 5-10 सदस्य हैं उनकी सुखपूर्वक चल सके, इतना कुछ भगवान से मिले, लेकिन भगवान निस्वार्थ सखा होने के नाते वो देखते हैं, मैं यदि सोने की द्वारका का अधिपति हूं तो सुदामापुरी भी सोने की होनी चाहिए ना, मेरे मित्र ने तो मित्र कैसा, मित्र तो समान होता है एक दूसरे के, न तो मित्र में हीनता की भावना रहेगी, भगवान हीनता की भावना निकालना चाहता है, इसलिए सखा है ना। तो ये जीव अपने अनादि परमात्मा, यद्यपि परमात्मा तो स्वरूप ही है, और थोड़ा उपाधि को लेकर के भेद हो जाता है जीव और परमेश्वर में, औपाधिक भेद, कल्पित भेद। तो उस पक्ष में उपनिषदें कहती हैं कि परमात्मा और जीव में मित्रता का संबंध है, वे एक दूसरे के मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, और वे सुख में भी साथ देता है तो दुख में भी साथ देता है। ये नहीं कि आप मनुष्य बने हैं या देवता बने हैं तो आपका साथ देते हैं, और कभी पाप का फल भोगने के लिए नरकादि में जाना पड़े तो जीव का वो साथ छोड़ता हो, ऐसा नहीं है, वो तो सबके हृदय में है ना। वहां ईश्वर सर्वभूतानाम कहने से, भूत शब्द से केवल मनुष्य और मनुष्य से उत्कृष्ट योनि को मात्र नहीं लेना है ना, 84 लाख प्रकार के सारे प्राणी और उनके हृदय में ईश्वर है, और जीव भी है, तो जीव का साथ वह हर स्थान पर देता है सुख दुख में, जब तक औपाधिक भेद है, और वो चाहता है कि मैं जैसा हूं ऐसा ही मेरा सखा भी बने, मेरे से अभिन्न नहीं बने, मेरे में और उसमें कोई भेद रहे ही ना, इसलिए वो हमेशा साथ में रहता है, देखता रहता है उस पर। अभिचाकशीति का है न, तयोर अन्यो पिप्पलम स्वादु अति अनष्टन अन्यो अभिचाकशीति। जीव अपने कर्म का फल भोगने के लिए जो भी शरीर धारण करता है उस शरीर में ईश्वर भी जाते हैं जीव के साथ, और जीव तो अपने कर्म का फल उस शरीर में रह करके स्वाद ले लेकर के भूखता है, लेकिन ईश्वर अनश्नन, वो अनशन करता रहता है। ईश्वर का अनशन कब से चल रहा है और क्यों कर रहे हैं अनशन? कहते हैं कि तुम खाते रहो, लेकिन मैं बिना खाए अनशन करता रहूंगा जब तक तुम मुझे देख करके मेरे तरह नहीं होते हो। ईश्वर को भूखे रख रहे हो आप, अनशन कराने में, ईश्वर को अनशन करने में मजबूर कर रहे हैं, तो अनशन करते रहते हैं। अनश्नन अन्यो अभिचाकषिति, देखते रहते हैं आपके तरफ कि आप भगवान का अनशन छुड़ा ले। किसको? ईश्वर तो दयालु है, इसलिए तो अनशन कर रहा है आपकी मुक्ति के लिए। आपको दया नहीं आती, ईश्वर भूखे हैं, आप खाते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को भी, भूखे ईश्वर को, वो भूखा रह करके हमारी जन्म जन्म से मित्रता निभा रहे हैं, तब भी आप खाते जा रहे हैं, उन पर देख ही नहीं रहे हैं, दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, तो निर्दयी तो आप हैं, जीव हैं, न कि ईश्वर। वो तो अनुग्रह मूर्ति है, वो तो चाहते हैं कि जीव मेरे तरफ देखे तो मैं उसे मेरे तरफ देखने मात्र से ही मेरे जैसा मैं ही बना दूं, अपना स्वरूप उसको दे दूं। भगवान अपने आप को प्रदान करते हैं, आप उस पर, उसके तरफ देखो मात्र, इतना ही मात्र भगवान की अपेक्षा है आपसे कि आप उनके तरफ दृष्टि डालो, तो भगवान स्वयं को समर्पित कर देते हैं आपको, अपना स्वरूप आपको प्रदान कर देते हैं। इसलिए कठोपनिषद में और मुंडक में कहा गया, तस्येष आत्मा वि वृणुते तनुम स्वाम। तस्य यानी किसको? जो भगवान की ओर अपनी दृष्टि डालता है। जीव कि स्वभावतः दृष्टि अनात्मा संसार के ओर है, संसार को देखता है, और जो आवृत्त चक्षु होकर के अनात्मा की ओर से अपनी दृष्टि को मोड़ करके, प्रत्याहार करके उसका, और परमेश्वर के ओर लगाता है, तो परमेश्वर उसकी उस अहम वृत्ति में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उसके उसका आत्मा बन जाते हैं। तो दयालु वो है कि आप है? वो दयालु है, वो तो चाहता है कि आपको इस संसार समुद्र से निकाल दे, मुक्त कर दे, निरतिशय आनंद स्वरूप बना दे। थोड़ा सा आनंद का सैंपल मात्र दिखा दे ये नहीं, वो थोड़ा सा मिठाई का नमूना चखाते नहीं है, वो मिठाई बनाना चाहते हैं आपको। तो इस प्रकार ये भगवान तो साथ देता है, लेकिन हम जिन कलाओं के साथ हमारा वस्तुतः संबंध न होते हुए भी उसमें तादात्म्य करते हैं, और तादात्म्य करके संसारी बने हुए हैं, उन कलाओं से अपनी दृष्टि को हटा दें और परमात्मा की ओर ले जाएं। इसलिए परमात्मा ने कलाओं का निर्माण किया, संसार की रचना ईश्वर ने जीव को संसार से छुड़ाने के लिए की है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार, तो प्राण को बनाया, फिर श्रद्धा को बनाया, नहीं तो श्रद्धा की क्यों सृष्टि करते? श्रद्धा है वेदों के प्रति आस्तिक की बुद्धि। वेद जो साध्य साधन भाव बता रहा है वह ऐसा ही है, उसमें कोई गलत नहीं हो सकता। ऐसा जो अंदर से दृढ़ विश्वास श्रद्धा कहलाती है, वह एक बुद्धि की वृत्ति है, वो बनाई। उद्धार कैसे होगा वो सर्वज्ञ ईश्वर जानते हैं। जीव का अनादिकाल से संसार में डूबने वाला जो जीव संसार सागर में, उसे संसार सागर से बचाना है। कैसे बचाया जाएगा तो भगवान जानते हैं कि वेदों ने बताए हुए साधन ही जीव को बचा सकते हैं। और कोई उपाय जीव को संसार सागर से बचाने का है नहीं। तो जीव को ईश्वर वेदों के द्वारा बताए गए उपायों में प्रवृत्त करने में हेतुभूता जो श्रद्धा है उससे युक्त कर देते हैं, उससे अन्वित कर देते हैं। तो ये कहा गया कि स श्रद्धाम असृजत, उस परमेश्वर ने श्रद्धा को बनाया, श्रद्धा निष्पन्न की। और श्रद्धा के बाद ये पांच भूत कंख क वायु ज्योति इत्यादि से बताए गए, ख इत्यादि से, ये पांचों भूत स्थूल पंचभूत लेना। प्राण स्वयं भी भूतों का कार्य है, भौतिक है, इसलिए प्राण के हेतुभूत जो सूक्ष्म भूत हैं उनको तो प्राण को निष्पन्न करने के पहले ही परमेश्वर ने किया, वे षोडश कलाओं में नहीं गिने जाते हैं। उनका जो कार्य है प्राण आदि वह षोडश कला में गिना जा रहा है। इसलिए प्राण श्रद्धा और श्रद्धा के बाद ख इत्यादि पांच भूतों के वाचक शब्द से बताए गए पांच स्थूल भूत, और उन पांच स्थूल भूतों से भी समझना पांच स्थूल भूतों का जो सार रूप अंश है जिससे ये स्थूल शरीर बनता है, उसे शास्त्रीय भाषा में एक पारिभाषिक शब्द से कहा जाता है भूत सूक्ष्म। सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दो सूक्ष्म भूत तो है अपंचकृत पंचमहाभूत, जिनसे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पंच प्राण, मन बुद्धि, ये जो 17 तत्व हैं इनका समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और इन सूक्ष्म शरीरों का सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्वों का निर्माण होता है अपंचकृत पंचमहाभूतों से। तो ये जो अपंचकृत पंचमहाभूत हैं वे सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। शब्द उतने ही हैं, खाली सूक्ष्म शब्द भूत शब्द से पहले जोड़ेंगे तो अपंचकृत पंचमहाभूत का वो वाचक होगा सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म शब्द को बाद में और भूत शब्द को पहले रखेंगे तो भूत सूक्ष्म। ये भूत सूक्ष्म शब्द का अर्थ निकलता है स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश जो स्थूल शरीर का कारण है। स्थूल शरीर कार्य है, स्थूल भूत ये सीधे स्थूल शरीर के कारण नहीं बनते। जिस किसी भी स्थूल भूतों के अंश से सूक्ष्म ये स्थूल शरीर नहीं बनता। तो ये जो स्थूल भूत और स्थूल शरीर, इन दोनों के बीच में एक आता है जो स्थूल शरीर का साक्षात उपादान कारण बनता है। साक्षात उपादान कारण स्थूल भूतों के, स्थूल भूत नहीं है स्थूल शरीर के, स्थूल भूतों का जो सार है, सूक्ष्म अंश है, वो स्थूल पृथ्वी का भी अंश है, उसमें स्थूल जल का भी अंश है, स्थूल यानी पंचकृत वायु का भी, अग्नि का भी और आकाश का भी, लेकिन सार अंश है। जैसे ये जो इलायची का तेल निकालता है ना, तो इलायची जो फल होता है सूखा हुआ उसको उबालते हैं छिलके सहित, और फिर वो जो उसका अंदर बीज का तैलीय अंश है, सार अंश, वो आ जाता है पानी में, फिर उसको जैसे तैसे निकालते होंगे, हाँ जो भी करते हैं, और इलायची वैसी की वैसी फिर आपको दिखेगी, छिलके और बीज भी अंदर रहेंगे, लेकिन वो जो अंदर वाले बीज है जिसमें से तेल निकाल लिया है, और तेल निकाले बिना जो इलायची है वो दोनों को खा करके देखो तो ये चौथा चौथा मात्र लगेगा वो इलायची के बीज, और उसका जो है इलायची का अपना एक अलग स्वाद रहेगा, जिसमें से तेल नहीं निकाला है वो बीज, उनका रंग भी अलग और स्वाद भी अलग होगा और सुगंध भी अलग आएगी। इसमें न सुगंध रहती है न स्वाद रहता है, खाली चौथा चौथा रहता है। तो वो जो इलायची के बीज में से तेल निकला वो सारांश है। वैसा ये भूत सूक्ष्म है, स्थूल भूतों का वो इलायची के बीज के तेल रूपी सार के स्थान पर सार वस्तु, और वो है स्थूल भूतों स्थूल शरीरों का उपादान कारण। वो जो सार है, वैसे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बदलने पर भी वही वही रहता है, एक स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर की यात्रा प्रारंभ करता है जीव, तो इस स्थूल शरीर में से ही सूक्ष्म शरीर के सारे तत्वों को निकाल करके अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही इन सूक्ष्म शरीर के आश्रयभूत, ये पूरा स्थूल शरीर नहीं है, वो है वो सार अंश जो इसका उपादान कारण था, उस सार अंश को निकालता है, उतने को निकाल लिया और फिर उसके आरूढ़ होकर के ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को और स्वयं भी उस भूत सूक्ष्म के ऊपर आरूढ़ होकर के निकलता है, और वो इतना स्थूल भूतों का अंश होने पर भी इतना सूक्ष्म होता है कि शरीर की जो सूक्ष्मतम नाड़ियां हैं, हृदय संबंधी 101 नाड़ियां हैं ना, वहीं से अज्ञानी जीवों का उत्क्रमण होता है, निकलना होता है, उसी नाड़ी से जाना होता है। सुषुम्ना नाम की नाड़ी तो बहुत ही सूक्ष्म है, और उस नाड़ी के अंदर से ये भूत सूक्ष्म निकलता है सारे जीवात्मा को लेकर के, जीवात्मा को यानी एक प्रकार से ये भूत सूक्ष्म रूपी कपड़ा है, और उस कपड़े में ये अलग अलग 17 तत्व जो सूक्ष्म शरीर के अंश है उनकी गठड़ी बांधी जाती है, वो बैग जैसा है, और इस बैग में बैठ करके वो चला जाता है सुषुम्ना नाड़ी से निकल करके ब्रह्मलोक में। तो इतना सूक्ष्म है वो स्थूल भूतों का अंश होने पर भी, नाड़ी से भी निकल जाता है, कहीं रुकता नहीं है। हाँ, उसको भी आंख से भी अतिन्द्रिय है वो, स्थूल भूतों का अंश होने पर भी अतिन्द्रिय है, इंद्रियों से दिखता नहीं है, पास में बैठे हुए देखते रहते हैं, लेकिन कब निकल गया पता नहीं चलता, मालूम नहीं पड़ता, दिखता नहीं है। वो सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करने वाले यंत्र से भी उसका चित्र नहीं लिया जा सकता, अभी तक तो ऐसा कोई यंत्र नहीं निकला, जो जीवात्मा जाते शरीर से निकल करके जाता हुआ उसका चित्र आया हो, ऐसा नहीं हुआ है तो इतना सूक्ष्म होता है वो, और उसी से फिर वो सार है ना, दूसरा स्थूल शरीर बनता है। ये स्थूल शरीर का रॉ मटेरियल है, इसको परिवर्तित करके 84 लाख प्रकार के शरीर इसी से बनते जाते हैं। वो ईश्वर अपने संकल्प से इसी भूत सूक्ष्म से हर बार, कभी मनुष्य शरीर तो कभी देवता शरीर तो कभी पशु शरीर तो कभी पक्षी शरीर, बनने की शक्ति उस भूत सूक्ष्म में संचरित करता है, संकल्प करता है। और किस जीव के भूत सूक्ष्म में देवता शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति देंगे, किस शरीर जीव के भूत सूक्ष्म में ईश्वर संकल्प से मनुष्य बनने की शक्ति देंगे, इसका निर्धारण आपके कर्म के अनुसार होगा। भावी शरीर का प्रारब्ध कैसे होगा, उस प्रारब्ध का फल जिस शरीर में सरलता से भोगा जा सके ऐसा शरीर बने उस जीवात्मा का, ये संकल्प ईश्वर करता है। यदि पुण्य कर्म है जिनका फल देवता शरीर से ही भोगा जा सकता है तो उस जीवात्मा के भूत सूक्ष्म में ईश्वर संकल्प करते हैं कि ये जीवात्मा का ये भूत सूक्ष्म देवता शरीर के रूप में परिणत हो जाए। किसी के मनुष्य शरीर से ही भोगने योग्य कर्म प्रारब्ध बन करके प्रकट हुए हैं तो उसके भूत सूक्ष्म में ईश्वर संकल्प से मनुष्य शरीर दोबारा फिर प्राप्त कराने का संकल्प करते हैं। तो इस प्रकार ये वो सार है स्थूल भूतों का, और वो हर बार इस शरीर से निकल जाता है। फिर ये शरीर जब वो भूत सूक्ष्म निकल जाता है ना, तो उस बीज के तरह होता है जिस इलायची के बीज में से तेल निकला है, निस्तेज हो जाता है। तो दोनों बीजों में अंतर दिखता है ना आंख से भी, ऐसे मुर्दे को देखो और जब तक जीवित अवस्था में शरीर है उस शरीर को देखो, दोनों में अंतर होता है। ये अंतर क्यों होता है, वो जीवित अवस्था में वो भूत सूक्ष्मात्मक जो सार है वो इसमें रहता है, जिस इलायची के बीज में तेल है वो अलग चमकेंगे बीज, और जिसमें से निकाला वो सूखे सूखे ऐसे ही पड़े रहते हैं वो अलग होते हैं। ऐसा वो चौथा के तरह, चौथा ये मुर्दा शरीर पड़ा रहता है मृत शरीर, तो वो भूत सूक्ष्म है और उनको यहां पर ख वायु ज्योति रापह पृथ्वी इन पांच शब्दों से ग्रहण करना है। ये और उसके बाद इंद्रिय बताए गए 10 प्रकार के हाँ ब्रह्म ज्ञान से ही वो तत्व है ना। तत्व होने से या तो उस समय महाप्रलय में वो संस्कारात्मना रहेगा, जैसे सूक्ष्म शरीर रहता है प्राकृत प्रलय में, और ज्ञान से अत्यंतिक प्रलय होगा, उसका स्वरूपतः उच्छेद होगा सूक्ष्म शरीर का भी और भूत सूक्ष्म का भी। जिससे सूक्ष्म शरीर का उच्छेद होता है उसी से भूत सूक्ष्म का भी उच्छेद होगा, वो होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से ही। तो इस प्रकार ये भूत सूक्ष्म इनको ख इत्यादि शब्दों से कहा गया, और इंद्रिय वो 10 इंद्रियां हैं, उनके अवांतर दो भेद हैं, दो पंचक हैं, कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेंद्रिय पंचक, दोनों को ही इंद्रिय शब्द से लेना। चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वक ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं, इनको ज्ञानेन्द्रिय पंचक कहा जाता है। पंचक कहते हैं पांच के समूह को, ये पांच का समूह है, पंचक है। और कर्मेन्द्रिय पंचक है वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्मेन्द्रिय पंचक है। और इन दसों को भी, पांच कर्मेन्द्रियों को, पांच ज्ञानेन्द्रियों को यहां इंद्रिय शब्द से ग्रहण करना है कि स इंद्रियम असृजत। और इन दसों इंद्रियों का अध्यक्ष है मन, स्वामी। तो मन शब्द से वो अंतःकरण को लेना, मन को लेना। और ये इस प्रकार प्राण से लेकर के मन तक एक प्रकार से कार्य कारणात्मक, कार्य करणात्मक जो उपाधि है जीव की, कार्य कहते हैं स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर के हेतुभूत भूत सूक्ष्म को कहा का मतलब स्थूल शरीर भी आ गया। और करण यानी सूक्ष्म शरीर, ये जो जीव की उपाधि है इसका सर्जन ईश्वर ने किया ये बताया गया। सशब्द से ईश्वर को लेना है, परमेश्वर को लेना है। और ये स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर की अवस्थिति का निमित्त होता है अन्न, इसलिए अन्न को भी बना लिया ईश्वर ने। ये कहा कि अन्नम असृजत, स अन्नम असृजत। और स्थूल शरीर की तथा सूक्ष्म शरीर की स्थिति अन्न से इस प्रकार होती है, इनको बल मिलता है अन्न से, सामर्थ्य मिलता है। इसलिए कहा कि अन्नात वीर्यम, वीर्यम यानी सामर्थ्य, बल। ईश्वर ने एक बल भी एक जीव की 16 कलाओं में से एक कला है उपाधिभूता। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया अन्नम असितम त्रेधा विधीयते, आप जो अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, पे वस्तु पे जो खाद्य है उसको पी लेते हैं, खाद्य को खा लेते हैं, तो उसके पाचन क्रिया के माध्यम से तीन भाग बनते हैं, स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म। स्थूल भाग मलमूत्र बन करके अनुपयोगी होता है, निकल जाता है। और मध्यम अंश का अन्न जल के शरीर बनता है, शरीर को पुष्ट शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और सूक्ष्म अंश प्राण को, जल का जो सूक्ष्म अंश है प्राण को पुष्ट करता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और अन्न मन को सामर्थ्य देता है। तो इसलिए अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि हे सौम्य अन्नमय मन है, मतलब अन्न का कार्य है, अन्न का विकार है, अन्न से पुष्ट होता है। यदि अन्न नहीं खाएंगे, प्रैक्टिक अन्नमय शरीर ये मन कैसे है इसे समझाने के लिए एक मन में प्रश्न हुआ श्वेत केतु के, श्वेत केतु को समझा रहे हैं ना छठवें अध्याय में उद्दालक जी छांदोग्य उपनिषद के, कि आप कहते हो कि अन्नमय मन है, तो मन तो अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का कार्य है। और यहां अन्नमय है का अर्थ आप बता रहे हो कि अन्न का कार्य है, वो अन्न का कार्य कैसे है ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाओ। तो श्वेत केतु को उद्दालक जी ने कहा कि इसको समझना है तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, 15 दिन अनशन करो, 15 दिन खाना छोड़ दो और पानी पीते रहो, क्योंकि आपो में प्राण है, जल के सूक्ष्म अंश से प्राण पुष्ट होता है और मन अन्न के सूक्ष्म भाग से पुष्ट होता है। तो कैसे पुष्ट होता है मन अन्न के सूक्ष्म वाक से, इसे यदि तुम्हें समझना है तो 15 दिन मत खाओ। 15 दिन भूखा रखा, पानी पीने की अनुमति दे दी और 15 दिन बाद फिर कहा 16वें दिन मेरे पास आ जाना, तब तक छुट्टी। और 16वें दिन जब आ गए तो कहा कि ऋग्वेद के इस अध्याय के इस सूक्त का पाठ करो, यजुर्वेद के ये मंत्र बोलो, सामवेद के ये मंत्र बोलो। तो जो पूछते गए उसमें से एक भी उनको याद नहीं आ रहा। उससे पहले जब आए थे गुरुकुल से पढ़ करके ना, तो जहां से भी पूछो जिस नंबर का मंत्र बोलना शुरू कर देते थे। वो सीधा भी बोलते थे, उल्टा भी पाठ करते थे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर के यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, ये 700 श्लोक बहुत से बच्चे भी होते हैं जो पूरा याद करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उल्टा बोलना होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यहां से शुरू करके अंतिम में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को तो कठिन है ना, लेकिन श्वेतकेतु को इतना अभ्यास था कि चारों वेदों के मंत्र वो सीधे भी पाठ करते थे, उल्टे भी पाठ करते थे, बीच में से भी जहां से कहो वहां से पीछे भी जा सकते थे, आगे भी जा सकते थे। लेकिन जब 15 दिन तक भोजन किए बिना रखा और कहा कि ये मंत्र बोलो, तो एक भी याद नहीं आता था, स्फूर्णा ही नहीं होती थी, मन दुर्बल हो गया। और बाद में कहा कि ऐसा करो, अब 15 दिन और छुट्टी तुम्हारी, थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहना और फिर 16वें दिन आ जाना। फिर खाते गए, 15 दिन शक्ति मिल आई पहले जैसी, फिर जो भी मंत्र पूछा वो पहले के जैसे बोलते रहे। इससे उनको अलग से कहना नहीं पड़ा कि अन्नमयम ही सौम्य मना, वो समझ में आ गया कि अन्न से, खाए हुए अन्न से मन पुष्ट होता है, शक्तिशाली होता है, और जो समर्थ मन है वही याद करता है, दुर्बल मन को याद नहीं आती पहले अनुभूत वस्तु भी, उसके लिए मन का पुष्ट होना जरूरी है। तो इस प्रकार ये जो अन्न है ये आपके कार्य शब्दित स्थूल शरीर को भी अन्न का मध्यम अंश शक्ति प्रदान करता है और इंद्रियों को भी मन को भी पुष्ट करता है। तो मन को तथा शरीर को पुष्ट करने वाले अन्न की रचना की, उससे वीर्य यानि सामर्थ्य की भी ईश्वर ने रचना की, और फिर ईश्वर का मुख्य उद्देश्य ये सब कलाओं का निर्माण करके जीव को पुष्ट बना करके दंड बैठक कराने का नहीं है जीव से। खाली अखाड़ों में जैसे पहलवान वो करते रहते कुश्ती खेलने के लिए मात्र पुष्ट नहीं कर रहे हैं, तप करने के लिए भी आवश्यकता होती है सामर्थ्य की। एकदम दुर्बल व्यक्ति वो तप नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या का अर्थ होता है कष्ट सहन करना। कोई तपस्वी जो सुख सुविधा में अपने घर में रह रहा था वो घर छोड़कर के जंगल में जाता है और वहां सहन करता है वहां के कष्ट, वर्षा, गर्मी, ठंडी, और समय से वहां न नाश्ता मिलना है न कुछ है, कोई बना करके खिलाने वाला थोड़ी होता है। स्वयं खोलो अपना, स्वयं कहीं ना कहीं भूख लगी है तो फल कंद मूल खोजो वो खा लो, यही तो तपस्या है। तो तपस्या करने के लिए भी सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो ईश्वर ने अन्न से सामर्थ्य, और सामर्थ्य किस लिए दिया कि आपको संसार से उद्धार करना है, आपका मुक्त करना है आपको, तो इसलिए वैदिक साधन आप कर सको। तो तप ये माना जाता है वेदाधिकारी बनाने का साधन, इसलिए उससे वीर्य से फिर तप, ये भी एक कला है षोडश कला में से, तप नाम की कला को बनाया। ये आपके अंदर वेदाधिकारी बनने की योग्यता प्रदान करता है तप। अतपस्वी वेद को धारण नहीं कर सकता, वेद को धारण करने के लिए तपस्या की जरूरत है। और फिर तपस्या से भी एक अलग ब्रह्म तेज प्राप्त होता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है उससे, तेज उस तेज से तेजस्वी होकर के मंत्र, पहले ऐसे पुस्तकों में थोड़ी हुआ करते थे, पुस्तकें तो होती ही नहीं थी, इसलिए वेद का एक नाम है श्रुति, और श्रुति का अर्थ होता है जिसको सुना जाए और सुन करके धारण किया जाए। तो गुरु लोग उनकी परंपरा से उनको प्राप्त जो वेद मंत्र हैं वो बोल बोल करके सुनाते थे, वो बोलते थे वैसा ही बुलवाते थे विद्यार्थियों से, और वो सुन करके ही याद करते थे। जैसे नचिकेता के अंदर होता ना अग्नि विद्या, यमराज जी से नचिकेता ने सुनी और फिर जैसी की तैसी अग्नि विद्या के मंत्र जितने थे बोल करके सुना दिए। जैसे प्रवचन आदि होते हैं तो रिकॉर्ड होता है ना आपके यहां, और कोई सुनना चाहेगा तो वो सीढ़ी प्ले कर दे, तो वैसा का वैसा जो बोला है, जो वाक्य बोलते समय किसी को खांसी आई तो खांसी भी उसमें आएगी, नहीं यदि वो एडिटिंग करेंगे तो बिना एडिटिंग के जैसा का तैसा ही आता है ना, ऐसे ही वो नचिकेता ने सुना दिया यमराज जी को। ये सामर्थ्य आता है तपस्या से, गुरुओं ने वेद मंत्र सिखाए वैसे ही हम धारण कर लें, फिर उनका अर्थ भी बुद्धि में प्रकट हो, इसके लिए जरूरी होता है तपस्या, तपस्वी। इसलिए पहले गुरुकुल में राजाओं के भी बच्चे जाते थे, तो ये नहीं कि राजाओं के बच्चों के लिए कुछ अलग सुविधाएं होती थी, सब एक जैसे त्रैवर्णिकों के बच्चे, और वहां इसलिए सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण भी संदीपनी के यहां जंगल से लकड़ियां यज्ञ आदि के लिए लाता था समिधाएं, तो कृष्ण और बलराम भी मथुरा के राजपुत्र हैं तो वहां से कुछ ये कर ले, ऐसा नहीं, उनको कुछ अलग सुविधाएं नहीं, वो भी वही सब करते थे, तपस्या वहां कराई जाती थी ना, इसके बिना मन में योग्यता नहीं आती, उसके लिए जरूरी होता है बाह्य अभिमान छूटना, वो तपस्वी का वो छूट जाता है। तो ये फिर मंत्र, तपस्वी के लिए मंत्र भगवान ने, इसलिए जो तपस्वी होते हैं ना उन्हीं के बुद्धि में मंत्र अभिव्यक्त होते हैं, और तपस्वियों को ऋषि कहा जाता है, ऋषि कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो ऋषि होते हैं वे मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। और मंत्र का अर्थ भी बुद्धि में आ गया तो मंत्रार्थ है फिर कर्म, मुक्त होने के लिए गीता में भगवान ने कहा न कि जो कर्माधिकारी है वह जब तक कर्म नहीं करता तब तक नैष्कर्म शब्दित मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न तो संन्यासना देव सिद्धिं समधिगच्छति। जिसका चित्त कर्म नामक साधन से निवृत्त होने वाले दोष से दूषित है वह ईश्वर अर्पण बुद्धि से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान यदि नहीं करेगा तो चित्त शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध चित्त नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो समाधि षट संपत्ति नहीं आएगी, वास्तविक मुमुक्षा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कर्म करना भी। तो फिर ये कहा कि मंत्र के बाद में ईश्वर ने षोडश कलाओं में एक कर्म नाम की कला भी बना दी। तो मंत्राह कर्म, तो कर्म एक कला है। कला का मतलब एक, ये जो कला होती है वो कला, ये कला दिखा रहे हैं नाटक आदि, वो कला नहीं, कलाकार की कला। कला यानी ये उपाधियां, 16 उपाधियां हैं। तो कर्म रूप एक कला बनाई, और कर्म है वेदों ने बताए हुए अपने उद्धार के साधन के रूप में जो उनका अनुष्ठान, और ये करने से फिर या तो मोक्ष के लिए निष्काम कर्म कर ले, या अभ्युदय के लिए संसार अंतपाती उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म का अनुष्ठान करते रहे, और इसके पश्चात फिर लोकाह। लोक शब्द का अर्थ है कर्मफल। लोक्यते भुज्यते, लोक्यन्ते भुज्यन्ते एते लोकाः, ऐसे लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो जिनका अनुभव किया जाता है, जिनको भोगा जाता है, उन्हें कहा गया लोक। तो लोक शब्द का अर्थ है कर्मफल। तो कर्मफल भी ईश्वर ने बनाया। कर्मफल है ये सुख दुख भी, और सुख दुख का अनुभव जीव जिस शरीर में रह करके करता है वो शरीर भी। इसलिए लोक शब्द से शरीरों को भी लेना, 84 लाख प्रकार के शरीर, ये कर्मफल है। कर्म है, कर्मफल है। और लोकेषु च नाम च, और नाम नाम की एक कला है। नाम यानी संज्ञा, ये देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है, ये दुर्गा प्रसाद है, ये शंकर प्रसाद है, इत्यादि जो नाम, ये नाम भी एक कला है। और पूरे जगत को, इन 16 कलाओं को दो शब्द से कहना है तो नाम और रूप। नाम रूपात्मक जगत कहा जाता है, अनात्म पदार्थ कहा जाता है। नाम है अभिधान, वाचक शब्द, और रूप है उसका अर्थ। तो अर्थात्मक उपाधि और नामात्मक उपाधि, नाम रूपात्मक उपाधि का सर्जन ईश्वर ने किया। और ये नाम रूपात्मक उपाधि जब तक रहती है चेतन के साथ, तब तक इसे षोडशकल पुरुष, षोडश कला से युक्त है। और स्वतः पुरुष है का मतलब पूर्ण है। और जब ये 16 कलाओं का उच्छेदक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त करता है, तब जाकर के निष्कल हो जाता है। इसकी चर्चा आ रही है आगे वाले मंत्रों में, वो हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।